ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध एक संध्या अपने विहार में प्रवचन दे रहे थे और जब वो प्रवचन पूरा होने आया तो उन्होंने कहा, समय बहुत कम है, समय हाथ से निकला जा रहा है, जो करना है अभी करो। और प्रवचन पूरा हुआ, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। और वो वहां से उठते हैं और लोगों की भीड़ है और लोग एक दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और एक स्थान पर दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी एक महिला महात्मा बुद्ध के पास आती है और कहती है, मैं एक नर्तकी हूं और आज संध्या किसी सेठ के घर मेरा नृत्य का कार्यक्रम था और मैं भूल ही गई थी प्रवचन सुनते सुनते, और जैसे ही आपने कहा कि समय बहुत कम है, जो करना है अभी कर लो, तो मुझे याद आ गया कि मुझे जाकर नृत्य करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चली जाती है। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं डकैत हूं, एक डाकू, आज रात को मुझे डाका डालना था एक जगह, और यहां से गुजर रहा था तो देखा यहां प्रवचन चालू है, सत्संग चालू है, मैं बैठ गया और मैं तो भूल ही गया कि मुझे डाका भी डालना है। पर जैसे ही आपने कहा कि जो करना है अभी कर लो, तो एकदम से मुझे जागृति आई, आपका बहुत धन्यवाद, मैं अभी जा रहा हूं डाका डालने। एक तीसरा, एक वृद्ध व्यक्ति सम्मुख आता है और कहता है, मैंने अपना सारा जीवन मोह भोग और वासना में बिता दिया, जो करना था वो नहीं किया, आंख अब खुली, जैसे ही आपने कहा कि जो करना है वो कर लो, समय बहुत कम है, चेतना के जैसे द्वार खुल गए, सोई हुई आत्मा जैसे फिर से जागृत हो गई और संसार से जो मोह था वो एक धक से छूट गया और आपके एक शब्द ने हृदय में फिर से वैराग उत्पन्न कर दिया। ऐसा लगता है जैसे जीवन व्यर्थ चला गया और जो करना था वो नहीं किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने फिर से याद दिला दिया कि समय बहुत कम है। वो भी चला जाता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, देखा, वाक्य तो मैंने एक ही कहा था पर सुनने वालों ने अपने अपने ढंग से उसको लिया। जिसकी जैसी योग्यता और जिसकी जैसी धारणाएं और जिसके जैसे विचार और जिसकी जैसी योग्यता, उसी अनुसार, उसी विचार धारा के अनुसार हर व्यक्ति ज्ञान को समझता है, जानता है। अभी अभी पिछले रविवार अव्यक्तवाणी चली थी, पहली मुरली उसकी 22/4/84। वर्षा, अधिकार और खजाने सबको समान मिले, परंतु फिर भी हर एक अपनी धारणा के अनुसार उसे धारण करता है, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार उसे धारण करता है। बाप ने सबको समान सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी लेने वाले नंबरवार है। तो मुरली की शुरुआत थी रूहानी बाप किसको देख रहा है, रूहानी बच्चों को देख रहा है। और क्या देख रहा है, हर एक ने कितनी अपने अंदर रूहानी शक्ति भरी है, कितनी स्पिरिचुअल पावर्स स्वयं में भरी है, क्योंकि ये समय स्वयं में शक्ति भरने का है। अभी अभी मुरली चली थी शांतिवन में, स्वयं को जानो और समय को जानो। ये मत पूछो कितना समय बाकी है, तुम्हें अपने शरीर का भी भरोसा नहीं, कब होगा इस शरीर का विनाश कोई कह नहीं सकता। इसके लिए इस समय के महत्व को जानो। तो संगम युग पर स्वयं में स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है, यही काम आएगी। आध्यात्मिक शक्ति से आत्मा को भरना है। तो बाबा ने क्या देखा, यह देखा कि हर एक ने अपने अंदर कितनी रूहानी शक्ति भरी है और हर एक कितना सुख स्वरूप है, खुशी स्वरूप है, कितना इस खुशी के खजाने से स्वयं को भरा है। खजाने सबको दिए हैं, खजाने अखूट है, खजाने वर्षा और अधिकार तीनों ही समान मिला है, परंतु लेने वाले नंबरवार। बाबा एक वाक्य कहता है उसके हजारों अर्थ निकलते हैं। वो बात हमने कही थी महात्मा बुद्ध की, वो एक धर्म स्थापक, उसकी कही हुई एक बात के इतने अर्थ है। ये तो सभी धर्म स्थापकों का पिता है, जितने टीचर्स आए संसार में आज तक, उन शिक्षकों का ये शिक्षक है, परम शिक्षक, परम गुरु, गुरुओं का गुरु। तो वो जब कुछ कहता है उसमें बड़े राज होते हैं, वो जो कुछ कहता है उसे समझने के लिए बुद्धि बड़ी महीन चाहिए। आज सुबह की साकार मुरली, मैं तुमको राइट बातें बतलाता हूं, अब तक तुम अनराइटियस सुनते आए हो, अब वो सुनो जो मैं सुनाता हूं। तो सबसे पहली बात बाबा ने क्या देखा, तो देखा कि किसने कितनी अपने अंदर रूहानी शक्ति भरी है, और ये देखा हर एक कितना खुशी स्वरूप है, अर्थात जो खजाने प्राप्त हुए हैं वो खजानों से आत्मा को कितना भरा है। और नीचे जो मुरली चली थी शांतिवन में, बाप दादा ने किसको देखा, परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों को देखा, और कौन कितना समान में स्थित है ये देखा। कोई कोई थे जो सीट पर नहीं थे, अपसेट थे, परेशान थे, सीट से नहीं उतरना और समय के महत्व को नहीं भूलना, ये दो होमवर्क थे। दूसरी बात इस मुरली की, संडे की, बाप दादा की आशाएं, बाबा का एक शुभ संकल्प है कि सभी संपूर्ण बन जाए, सभी वर्षे के अधिकारी बन जाए। तीसरी बात उसमें थी वरदान, सभी याद में जीते रहो, हे लगन में मगन आत्माओं, क्या करो, सभी याद में जीते रहो। आज सुबह की मुरली में याद की एक परिभाषा बाबा ने दी है, कौन सी, बेहद का सन्यास, बेहद का वैराग, यही याद है। बाप को याद करना यही बेहद का सन्यास है। सुनी ऐसी परिभाषा कभी? नई परिभाषा दी है। एक की याद में क्या स्नान करते समय तुम बाप को याद नहीं कर सकते? प्रश्न पूछा है एक जगह। सभी देहधारियों की याद को हटा दो और एक की याद में डूब जाना, एक की याद में खो जाना, उसी में रस है। और जिसने ये रस ले लिया उसे संसार के सभी रस फिर फीके पड़ते, फीके लगते। जैसे दिखाया है, एक शिकारी किसी जंगल में जाता है, शेर को मार देता है और शेरनी को भी मार देता है, और जब पहुंचता है तो देखता है छोटे दो बच्चे हैं, दोनों को घर ले आता है, एक मर जाता है एक रहता है, और उसकी पालना करता है, उसको दूध मिठाई खिलाता है। सारे गांव में वो शेर घूमता है और सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी सबको बहुत प्यार करता है। वो ऐसे ही बैठता है जैसे कोई कुत्ता कोई बिल्ली, संपूर्ण शाकाहारी शेर। और एक दिन उस शेर को, उस शिकारी को पैर में चोट लगी होती है और वो शेर वहां बैठा है बच्चा, और वो चाट लेता है खून को और उसकी अंदर की प्रकृति जाग उठती है। अब तक वो पालतू था, अब वो खुखार बन जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त का स्वाद ले लिया। अब उसको घास फूस, वो दूध मिठाई, वो सब पसंद नहीं आता है और बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। शिकारी पर ही आक्रमण कर देता है। जब आंतरिक प्रकृति जागती है उसकी, जब आत्मा की आंतरिक प्रकृति जागती है, तो उसे केवल एक परमात्मा में ही रस आता है। फिर संसार के सारे सुख, संसार की सारी बातें गौण हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। जो रस ईश्वरीय रस में है, अतिंद्रिय सुख में है, वहां इंद्रिय सुख गिर जाते हैं। क्या हमने उस ईश्वरीय रस का स्वाद चखा है? हर एक ने चखा है, पर शायद विस्मृति है, इसलिए फिर फिर संसार की ओर आकर्षण है, इसलिए फिर फिर संसार के भोग विलास की तरफ आकर्षण है। सुबह की मुरली में वाक्य था एक, देवता है जो होते हैं उनका भोजन कैसा होता है? थोड़ा नहीं, सूक्ष्म। और विनाश काल में तुमको क्या मिलेगा भोजन के लिए? पूरा खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बोला है आज। कितना मिलेगा वो आप देख लो। तो वरदान दिया है बाबा ने, याद में जीते रहो, सुख शांति की पालना में पलते रहो, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, और दूसरी आत्माओं को सहज साधन के आधार पर, सुख शांति के सहज साधन के आधार पर बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ। ये चार वरदान है। सबसे पहला, याद में जीते रहो, अर्थात निरंतर याद का अभ्यास। जैसे कोई मां है और जिसका बच्चा सो रहा है और बाहर तेज बारिश हो रही है, वो नहीं जागती है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट है, वो नहीं जागती। बाहर तूफान है, वो फिर भी नहीं जागती। दरवाजे थपथपाते हैं, वो जागती नहीं है। पर उसका बच्चा जरा सा रोता है, तुरंत जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसी का ख्याल है, उसी का ध्यान है। बाहर की आवाजें उसे नहीं जगाती, पर अपने बच्चे की आवाज उसे जगा देती है। जिसकी बुद्धि में जो होगा वही उसे आकर्षित करेगा, उसी की आवाज उसको आएगी, बाहर की आवाजें उसे नहीं आएगी। कितना भी कोलाहल हो, कितनी ही हलचल हो, शोरगुल हो, वो आवाजें नहीं आएगी। जिसके मन में जो चल रहा है वही आवाज उसको आती है। जिसके मन में वो बसा है उसको कहीं पर भी हो उसी की आवाज आएगी, केवल उसकी, उसकी वाणी, उसकी मुरली, उसका ज्ञान, उसके शब्द, उसके महावाक्य, वही बुद्धि में गूंजता रहेगा। फिर बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, क्या भी हो, वो अब प्रभावित रहेगा क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है। जैसे दिखाया है, दो फकीर एक बाजार से, बहुत जहां पर आवाज ही आवाज है, आवाज ही आवाज है, वहां से गुजर रहे हैं और एक फकीर कहता है, देखो मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। वो दूसरा कहता है, तुमने कैसे सुन लिया, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, यहाँ तो खरीद फरोख्त हो रही है, लोग चिल्ला रहे, दुकानें बंद हो रही है, किराएदार लोग ग्राहक है, दुकानदार चिल्ला रहे हैं, इतनी आवाज है, फिर भी तुमको उस मस्जिद और उसकी अजान की आवाज इस शोरगुल में कैसे आ गई। वो कहता है, अभी बताता हूँ, और अपने जेब से एक सिक्का निकालता है और उछालता है और वो धड़ाम से गिरता है आवाज, सारे लोग इकट्ठा हो जाता है, क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा, पैसे गिरे पैसे गिरे पैसे गिरे, इतनी आवाज में सबको सुनाई दे दिया, सिक्के की आवाज। क्यों? क्योंकि बुद्धि में सिक्के ही गिन रहा है हरेक, कितना हुआ, जो जिसकी बुद्धि में जो गिन रहा है वही उसे सुनाई देगा। जिसकी बुद्धि में ज्ञान की झनकार है उसे ज्ञान ही सुनाई देगा। जिसकी बुद्धि में ज्ञान की वीणा बज रही है उसे वो वीणा कितनी भी दूर हो, परम धाम में बजने वाली वो वीणा मौन की उसे यहां सुनाई देगी। तो याद में जीते रहो, सुख शांति में पलते रहो, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, और जो अतिंद्रिय सुख के झूले में है वो मिट्टी को स्पर्श नहीं करते। अभी अभी स्लोगन था वैष्णव अर्थात विकार रूपी गंदगी को जो छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते। और आप जो मुख्य मुरली थी, चार बातों पर थी जिसकी हम चर्चा करेंगे, विचित्र बाप, विचित्र पढ़ाई, दूसरा विचित्र बाप, तीसरा विचित्र स्टूडेंट, और चौथा विचित्र प्राप्तियां। ये मुख्य मुरली थी। तो सबसे पहली बात है, ये पढ़ाई कैसी है? विचित्र पढ़ाई है। क्यों ये पढ़ाई विचित्र क्यों है? आज की मुरली में क्या कहा अंग्रेजी शब्द इस पढ़ाई के लिए? हाईएस्ट, द बेस्ट, सर्वोत्तम पढ़ाई है ये। ऐसी पढ़ाई और कहीं पर भी नहीं है। द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। और ये पढ़ाई विचित्र है, ये वो पढ़ाई है जो चरित्रवान बनाती है। बाबा ने कहा ये वो पढ़ाई है जो मानव को देव बनाती है, वो ये पढ़ाई है, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है ये। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। सब इसको पढ़ भी नहीं सकते, इतनी ऊंची, इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ ये पढ़ाई है, और केवल इसी संगम पर ये पढ़ाई जाती है। तो इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। इस पढ़ाई की पांच बातें हैं जो हर एक को ध्यान रखना है, और जब भी मुरली सुनेंगे ये पांच बातें याद रखनी है। अंग्रेजी का शब्द है मुरली, MURLI, एम अर्थात मनन, मुरली अर्थात, एम अर्थात मनन करना उसका। केवल मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल पॉइंट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान अर्थात तोता रटन नहीं है, क्योंकि ज्ञान अर्थात किताबी कीड़ा बनना नहीं है, ज्ञान अर्थात ज्ञान के शब्द लेना, वाक्य लेना और उनका क्या करना, चिंतन करना, मनन करना, एक एक शब्द का चिंतन। ये बाबा ने ऐसा क्यों कहा, किस अर्थ से कहा, इसका क्या गुह्य राज है ये कहने के पीछे। तो सबसे पहली चीज जो करनी है ज्ञान के साथ पढ़ाई में, वो है मनन, मंथन। जैसे दो व्यक्ति थे और दोनों चेस खेलते थे और दोनों हमेशा समान रहते थे, पर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति हारने लगा रोज और दूसरा खेलने लगा, जीतने लगा। जो हारने वाला था उसने क्या किया था, मार्केट से जाके किताब खरीद के लाई थी चार खंड की, चेस कैसे खेले, और उसने वो किताब पढ़ना चालू कर दी थी। और जब से किताब पढ़ना चालू कर दी थी वो हारने लगा था, क्योंकि किताब में जैसा लिखा रहता था वो वैसा करता था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं तो हमेशा जीतता था या ठीक था पहला, अभी ऐसे क्यों हो गया। तब उसको लगा ये गड़बड़ किताब की वजह से हुई है, तो उसने एक काम किया, वो किताब गिफ्ट में दे दी अपने फ्रेंड को, और जब से गिफ्ट में अपने दोस्त को दे दी उसके बाद इसका जीतना चालू हो गया। क्योंकि ज्ञान अर्थात केवल किताबी कीड़ा बनना नहीं, केवल पढ़ना नहीं, परंतु ज्ञान अनुभूति है। नॉलेज इज एक्सपीरियंस। इस संसार में कौन होगा ऐसा जिसे पता नहीं कि मैं आत्मा हूं, सभी को पता है। जो ज्ञान में है और जो नहीं है उन्होंने भी आत्मा शब्द सुन के रखा है। बाबा ने कहा तीन शब्दों का यह ज्ञान है, पढ़ाई है, कौन से, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, बस। और इनसे दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, कौन से, त्रिकालदर्शी और ज्ञान स्वरूप, ऐसी ये पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई में पांच बातें, जब भी मुरली सुनने बैठो, जब भी मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पांच चीजें याद रखनी है। एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना है वो है क्या, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात रटन नहीं, ज्ञान अर्थात भाषण नहीं, ज्ञान अर्थात खाली कोर्स कराना नहीं, ज्ञान अर्थात सूचनाएं नहीं। सूचनाएं बहुत प्राप्त कर ली, मैं आत्मा हूं, वह परमात्मा है, संगम युग है, वो आया हुआ है, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, ये संगम युग है, ये ब्रह्मा है, इस तन में वो आया है, अभी वापस जाने का समय है, सतयुग ऐसा है, सतयुग आएगा, ये 5000 साल का चक्र है, ये सीढ़ियां है 84 जन्मों की। सूचनाएं बहुत एकत्र कर ली है, पर सूचनाओं को ही ज्ञान समझने की भूल नहीं करना है। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात धारणा, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल जीवन, ये ज्ञान की परिभाषा है। शांतिवन में मुरली चली, बाबा ने कहा सदा शब्द को अंडरलाइन नहीं करो, परंतु प्रैक्टिकल में लाकर उसको अंडरलाइन करो। केवल अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होगा, अलग अलग स्केच पेन से मुरली कई लोग कलरफुल बना देते हैं, इतने रंग भर देते हैं उसमें, वो भी अच्छी बात है, न करने से तो वो अच्छा ही है। तीन प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो एकांत में पढ़ाई करते हैं, दूसरे वो जो संगठन में पढ़ाई करते हैं, और तीसरे वो जो ना खुद पढ़ाई करते हैं और ना दूसरों को पढ़ाई करने देते हैं। ऐसे ये तीन प्रकार के स्टूडेंट बताए हैं, जो खुद कुछ नहीं करते पर जो कर रहा है उसको भी नीचे गिराते हैं। तो सबसे पहली बात मनन, दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझना, क्या है, क्या है इसका राज। और समझने के लिए पहले ये समझना कि मैंने नहीं समझा है, अहंकार को थोड़ा सा चोट लगेगी कि मैंने अब तक नहीं समझा, इतनी सिंपल बात तो मुझे कब की पता है, ये तो मैंने कितनों को समझाया है, पर अब ये समझना कि नहीं समझा है, तो समझने की प्रक्रिया आरंभ होगी, अब समझना है। तीसरी बात आर, एम यू आर, आर अर्थात, आर अर्थात रीडिंग एंड रिवाइजिंग, रीड करना और रिवाइज करना, उसको पढ़ना, परंतु कैसे पढ़ना, गहराई से पढ़ना। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और संतुष्टता हो गई, आज की मुरली हमारी पढ़ के हो गई, बाबा ने कहा है मुरली पढ़ो, हमने तो पढ़ ली है, बोझ है जब तक नहीं पढ़ते, पढ़ ली एक बार की काम पूरा हुआ, अब दूसरे कारोबार, मुरली कारोबार नहीं है, फटाफट करके पढ़ लिया और काम पूरा हो गया। रीडिंग, जब रीडिंग हो तो वो रिवाइज भी हम करा सके, कर सके, और खुद ही मन में रिवाइज करनी है, जो पढ़ा उसको याद करने की कोशिश करना, क्या पढ़ा, कौन सी बातें थी, कैसी बातें थी, कौन से समान थे, बाबा ने अपने लिए क्या क्या टाइटल दिए, अपने हमारे लिए क्या क्या टाइटल दिए, संगम युग के कौन कौन से नाम गिनाए, कलयुग के कौन कौन से नाम गिनाए, वरदान में क्या था, स्लोगन में क्या था, महावाक्य क्या थे, कौन से इंग्लिश शब्द मुरली में आए हैं, कौन सी मुहावरे आए हैं, कौन सी कहानियां आई है, भक्ति की कौन सी बातें आई है, किस किस व्यक्तियों को बाबा ने याद किया है, कितने अलग अलग ढंग है एक ही मुरली को समझने के, पढ़ने के, बाबा ने कौन से उदाहरण दिए हैं, कौन सी तुलना की है संसार में वो, इस ज्ञान में ये सतयुग और त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों के बारे में क्या कहा है, सेवा के बारे में क्या कहा है, योग के बारे में क्या कहा, ज्ञान के बारे में क्या कहा, अलग 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 ढंग से। आज की मुरली में भी था, सुबह कोई स्टूडेंट 20 मार्क लेते हैं, कोई तो नापास होते हैं, इस मत पर ही नहीं चलते, ये वंडरफुल मत है, महावाक्य है। तो रीड अर्थात पढ़ना और साथ साथ क्या करना, पुनरुक्ति, उसको रिपीट करना या रिवाइज करना। और रिवाइज कैसे करेंगे, दिनचर्या में जो भी मिले उसको पूछो या बोलो, देखो आज बाबा ने स्लोगन में कितनी अच्छी बात कह दी, जो भी दिनचर्या में मिले जिसको ज्ञान में इंटरेस्ट है उनसे कहना, नहीं तो ज्ञानियों को ज्ञान सुनाए तो एलर्जिक रिएक्शन होती है जबरदस्त, जरा सोच समझ के संभाल के ज्ञान सुनाना है, ज्ञानियों को पसंद नहीं आता है बिल्कुल, तो जिसको इंटरेस्ट है उनसे चर्चा करना कि बाबा ने ऐसी बात आज मुरली में कह दी, कितनी नई थी ये बात, आज तक कभी आई नहीं, पहली बार सुनी, तुम्हें केवल अपना आधार नहीं बनना है, तुम्हें दूसरी आत्माओं के लिए भी आधार मूर्त बनना है, वरदान, कहीं मैं अपने लिए तो नहीं जी रहा हूं, मेरा अपना पुरुषार्थ, मेरे अपने दुख दर्द, मेरी शरीर की बीमारियां, बस इसी में हम डूबे हैं और विश्व कल्याण रह गया बाजू में, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद में एल, एल अर्थात लर्न, लर्न अर्थात याद कर लेना, कुछ कुछ चीजें छोटा बच्चा कैसे याद कर लेता है, रट लेता है कुछ कुछ चीजें, वो भी आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि चाहती है कि बिल्कुल याद ना करे, उसको आराम चाहिए एकदम, पढ़ लो एक बार और भूल जाओ, परंतु अगर किसी को कहो ये कविता है उसको याद करो तो कितनी बार पढ़ना पड़ता है, फिल्म का एक एक्टर होता है अपने डायलॉग्स को याद करने के लिए कितनी बार पढ़ता होगा, नई भाषा सीखने के लिए उस गांव में जाता है, उस शहर में जाता है, नई भाषा सीखता है, कितनी कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि उसको फिल्म में काम करना है, हम कौन है, हीरो एक्टर, हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितनी बार रिहर्सल करनी पड़ेगी, कुछ कुछ बातें याद कर लेनी है, जैसे वरदान पूरा के पूरा याद कर लेना है, जैसे स्लोगन पूरा के पूरा याद कर लेना है, और याद करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पूरी दिनचर्या की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, कितनी बार पढ़ना होगा अगर याद करना है तो, एक ही स्लोगन को याद करने के लिए कितनी बार उसको पढ़ना पड़ता है, एक वरदान जैसे के वैसा याद करने के लिए कितनी बार उसको पढ़ना पड़ेगा। मन तो कहता है याद, बाबा ने तो कहा ही नहीं ऐसा, पूरा याद करो। बाबा ने कहा समझो, समझना भी है परंतु याद भी करना है। याद इसलिए करना है क्योंकि बुद्धि में इतनी कट लगी हुई है, जन्म जन्म की जंग है, ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने हैं और वो क्रिएट होंगे याद करने से, रिमेम्बरिंग से, मेमोराइजेशन से, और उससे स्मृति की शक्ति भी बढ़ेगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। और जब हमें याद है चीजें तो सारी दिनचर्या में हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर भूल जाए फिर से मुरली खोलो, पढ़ो और फिर चिंतन करो। याद रहेगा तो चिंतन कर सकेंगे, याद रहेंगे तो दिनचर्या में परिस्थितियां जो आएगी उसमें अप्लाई कर सकेंगे। याद ही नहीं तो अप्लाई क्या करेंगे, कौन सा ज्ञान, मैं आत्मा हूं बस इतना ही। तो लर्न, और लास्ट है आय। आय अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण कर लेना। तो जो भी चीजें सुनो या सुनाओ, लक्ष्य रखना है ये धारण हो जाए। लक्ष्य रखना है मुझे भी याद रहे ताकि दूसरों को भी याद करा सके। कल की मुरली में था, तुम्हारा धंधा ही क्या है, टीचर बनना है, हर एक को टीचर बनना है, ये फैक्ट्री है टीचर बनने की। तो एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, आर अर्थात रीडिंग एंड रिवाइजिंग रिपीटिंग, एल अर्थात लर्न बाय हार्ट। कुछ कुछ बातें ऐसी पावरफुल आती है मुरली में, ऐसी पावरफुल आती है कि उसे तो पूरा के पूरा क्या कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए उसको, चौप चीनी, तरावती माल, वखर, ज्ञान की चिड़िया हप कर ले सागर को। और लास्ट बताया इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना है, और धारण होगी योग में। देखना है वो ज्ञान सूर्य और उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, सारा ज्ञान अपने आप धारण हो रहा है, संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान मुझ में धारण हो रहा है, सारा ज्ञान अंदर ही अंदर समाते जा रहा है, रग रग में समा रहा है, धमनियों में रक्त की तरह बह रहा है। तो ये सबसे पहली बात थी विचित्र पढ़ाई। विचित्र अर्थात अद्भुत, विचित्र अर्थात निराकार, जिसका कोई चित्र नहीं, गुप्त, विचित्र अर्थात अनूठी, स्ट्रेंज, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया, जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जो किसी शास्त्र, किसी उपनिषद, किसी वेद, किसी कुरान, किसी बाइबल, कहीं पर भी नहीं है, किसी धर्म स्थापक ने नहीं सुनाई, किसी शंकराचार्य ने, किसी इमाम ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी बुद्ध ने, किसी अवतार ने, किसी पयंबर ने, किसी पैगंबर ने, किसी मैसेंजर ऑफ गॉड ने, किसी बिगॉटन सन ऑफ गॉड ने, धर्मावलंबी ने, धर्म स्थापक ने नहीं सुनाई, वो बातें यहां पर है। इसके लिए आश्चर्य का भाव हो मुरली सुनते समय, विस्मय का भाव, जैसे छोटा सा बच्चा होता है कितना विस्मय से भरा होता है, समुद्र के किनारे पर पत्थर बीनता है, बड़ों को इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजों में, छोटा सा बच्चा कितनी उत्सुकता होती है सूरज जब उगता है, तो वैसी उत्सुकता छोटे बच्चे जैसी कि ये है मुरली, इसमें क्या है, ये कौन से शब्द है, ये कौन से वाक्य है, ये क्या कह रहा है, और कौन कह रहा है, और कहां से कह रहा है, ये कैसी धारा बह रही है इसमें, ऐसा विस्मय का भाव छोटे बच्चे जैसा मुरली के प्रति, ज्ञान के प्रति, पढ़ाई के प्रति। द बेस्ट कहा इसको बाबा ने कहा आज, द बेस्ट, द हाइएस्ट। कुछ दिन पहले मुरली में एक वाक्य था, ये कौन सा क्लास है, ये कौन सा क्लास है, होलीएस्ट ऑफ द होली क्लास है, कौन सा क्लास है ये? होलीएस्ट ऑफ द होली क्लास है ये। तो सबसे पहली बात विचित्र पढ़ाई, तो इस पढ़ाई के महत्व को समझना है, समय को समझना है, मैंने कितना समझा है। और इसके पहले भी एक बात कही थी, 69 से चली हुई अव्यक्त वाणी अब तक क्या एक बार भी हुई है पढ़ के या नहीं? बहुत बड़ी साधना है अव्यक्त वाणियों का चिंतन करना, अव्यक्त वाणियों को पढ़ना, समझना, एक एक परिच्छेद, एक एक पैराग्राफ में साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, विज्ञान, मनोविज्ञान क्या क्या भरा है उसमें, चेतना की वो परतें खुलती है उसमें से जो आज तक किसी ने कभी नहीं बताई, ऐसी बातें हैं उसमें। तो सबसे पहला तो इस पढ़ाई का महत्व, इसके लिए बाबा हमेशा कहते एक दिन भी मिस ना हो, एक दिन भी मिस ना हो। दूसरी बात है विचित्र पढ़ाने वाला, विचित्र टीचर। कैसा टीचर है ये, कैसा है किस किस को पढ़ा देता है? जो ना उम्मीदवार थे उनको उम्मीदवार बना देता है, जो असंभव है उसको संभव बना देता है, जो गणिकाए है, जो अहिल्याए है वो कुब्जाए है, वो भिलनी है, उन सबको ज्ञानी बना देता है। ऐसा ये टीचर है, अनपढ़े को पढ़ा लिखा बना देता है, गरीब को साहूकार बना देता है, ऐसा ये टीचर है। और उसकी टेक्निक, उसकी विधि कितनी परफेक्ट है, ऐसी ऐसी बातें बताता है कि सबको अपने आप तीर लग जाता है, जिसको जो चाहिए वो दे देता है। ऐसा जगत गुरु है, ऐसा परम शिक्षक है वो। तो वो विचित्र है, निराकार है। यदि उस निराकार की बातों को समझना है तो स्वयं की स्थिति भी निराकार चाहिए। टीचर अव्यक्त है तो टीचर की बातें भी अव्यक्त है, और अव्यक्त टीचर की अव्यक्त बातें समझने के लिए अव्यक्त स्थिति ही चाहिए। स्पीकर यहां बैठा है, ऑडियंस इधर है, कैसे समझेंगे? दोनों को एक लेवल का चाहिए होना होगा। वो मौन में है, हम आवाज में है, क्या आवाज में मौन की भाषा समझ सकती है? वो परम मौन में है। अभी अभी शांतिवन में बाबा आए थे, कैसी दृष्टि दी थी बाबा ने बीच में, कितनी शक्तिशाली दृष्टि थी, मुरली से भी ज्यादा शक्तिशाली दृष्टि थी, ज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली मौन है उस दृष्टि में। वो दृष्टि केवल उस डायमंड हॉल में नहीं घूम रही थी, संपूर्ण सकल जगत में वो दृष्टि घूम रही थी, क्योंकि वो जगत का पिता, जगत नियंता है, जगत में आया था तो दृष्टि से देख रहा था सबको, कौन सामने बैठे हैं। और कितने ऊंचे ऊंचे सामान दिए, सामान से नीचे नहीं उतरना है, सामान की सीट पर सेट होना है। सबसे पहला सम्मान था मुरली में, तुम सब कौन हो? डायरेक्ट संतान हो भगवान की, नंबर वन संतान हो। दूसरा सम्मान था फर्स्ट रचना हो, सृष्टि रचयिता की फर्स्ट रचना। तीसरा सम्मान था पूर्वज हो। चौथा सम्मान था पूज्य हो। पांचवा सम्मान था आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। अभी अभी जो मुरली चली सुनी ना सबने, खाली सुनी, सुनना नहीं है, पांच चीजें करनी है, मनन, समझ, कंठ कर लेना, उसको रिवाइज करना, याद कर लेना और धारण कर लेना। ये पांचों चीजें होनी चाहिए हर मुरली से। खाली सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। बाबा खुश होगा कि बाबा आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई। कोई क्लास कराने वाला खुश हो सकता है कि क्लास तुमने अच्छी कराई, पर भगवान खुश होगा क्या ऐसी बातों से कि बाबा वाह, पिछली बार इतना ठीक नहीं था आपका, ये ठीक था, पिछली पॉइंट शायद आप भूल गए थे, ये अच्छी सुनाई, वो इस बातों में झांसे में आने वाले नहीं है ये सब। बालक सो मालिक, ये एक समान था। ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता, ये एक समान था। और मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा तुम्हें प्राप्त होता है, ये भी एक समान था। नौ समान थे मुरली में जो नीचे चली। तो बाबा ने कहा समान की सीट पर सेट होना, नीचे नहीं आना। जब नीचे आ जाते हो, अटेंशन की कमी होती है, तब फिर देहभान आता है और देहभान से क्या होते हो, परेशान हो जाते हो। इसके लिए अलर्ट, खबरदार, होशियार। इसलिए अलर्ट, खबरदार, होशियार। बुद्धू नहीं बनना है यहां पर, होशियार बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। मुरली में था ना कुछ दिन पहले, तो ये बाप कैसा है, विचित्र है। ये टीचर बड़ा ही अद्भुत टीचर है। जैसे एक मां होती है, उसके चार बच्चे हैं, किसी के लिए उबला हुआ आलू बनाती है क्योंकि उसको पता है उसके पेट के बारे में। कोई दूसरा बच्चा है, उसके लिए सूखा आलू की सब्जी बनाती है। कोई तीसरा है, उसके लिए आलू से क्या बनाता है बताओ, माताओं को ज्यादा पता है, दम आलू। किसी के लिए पकोड़ा, परोठा। तो आलू एक ही है, पर आलू से अलग अलग चीजें बनाती है और अलग अलग बच्चों को अलग अलग देती है। वैसे ज्ञान तो एक ही है, कैफेटेरिया अप्रोच, परंतु वो इतना सब दे देता है, जिसको जो उठाना है उठाओ, जिसको जो अच्छा लगता है उठाओ, और वो अपने आप उठा ही लेती है आत्मा। मुरली सुनते 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 कोई ऐसी पॉइंट टच हो जाती है कि जो हमारे जीवन की समस्या थी उसका उत्तर उसमें है। परंतु वो सुनना कितना एकाग्रता वाला होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दूसरी बात थी, विचित्र बाप। तीसरा, विचित्र हम, विचित्र स्टूडेंट्स। हम क्यों विचित्र, हम भी निराकार। हमारी क्या विशेषता है, हमारी क्या विशेषता है, वो इतना श्रेष्ठ, पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ, और हम कौन, उनके बच्चे। बाबा दादी कहती थी ना, प्रकाशमणि दादी, बाबा हम जैसे बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हम जैसे स्टूडेंट्स और टीचर तुमको कभी नहीं मिलेंगे। इसी मुरली में है शायद कि तुमको पढ़ाने के लिए बाप आते हैं, तुमको और कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। इसके दो अर्थ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव तो तुम इतने महान हो इसलिए बाप तुमको पढ़ाने आते हैं, तुम इतने श्रेष्ठ हो इसलिए पढ़ाने तुमको बाप आते हैं। और दूसरा भी अर्थ है, ऐसे बिगड़ेल हो तुम कि दूसरा कोई तुमको पढ़ा भी नहीं सकता, तुम्हारी अकड़ को दूसरा कोई तोड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। तुम्हारा अहंकार शिखर पर था, पर्वत पर बैठा हुआ, मुझे ही आना पड़ा तुमको बताने के लिए कि तुमने कुछ नहीं समझा है। मैं तुमको समझाता हूं, मैं तुमको बतलाता हूं सारे शास्त्रों का सार। तो दोनों बातें हैं उसमें। तो हम भी कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट है, ईश्वरीय स्टूडेंट है। हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी पवित्र है कि इस ज्ञान को धारण कर सकती है। दूसरा कोई इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकता, धारण भी नहीं कर सकता। बाबा हमेशा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देते, अगर मेडिकल कॉलेज में कोई नया व्यक्ति बैठ जाए तो क्या समझेगा उसको, थोड़ा देर बैठेगा, इधर उधर देखेगा और चला जाएगा। वैसे ही ये ज्ञान भी है, कोई बाहर का इसे समझ नहीं सकता, इतना ये सूक्ष्म ज्ञान है, इतना महान ये ज्ञान है। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, फिर स्मार्ट स्टूडेंट। अब स्मार्ट स्टूडेंट्स के क्या लक्षण है, स्मार्ट स्टूडेंट कैसा होता है, स्मार्ट स्टूडेंट के क्या लक्षण है, जो टीचर ने पढ़ाया वो तुरंत पढ़ता है, तुरंत धारण करता है। और क्या करता है स्मार्ट स्टूडेंट, होमवर्क करता है, होम ढूंढता है, आज की मुरली में क्या होमवर्क है, कई बार पढ़ता है, कई बार पड़ता है, बहाने नहीं देता कभी भी। जैसे कोई एक जोक हमेशा बताया जाता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने वो लालटेन पर पढ़ाई की थी, लालटेन के प्रकाश में। अब्दुल कलाम जी ने कैंडल लाइट में पढ़ाई की थी, और वो जॉर्ज बुश ने स्ट्रीट लाइट पर पढ़ाई की थी, और हमने अगरबत्ती, अर्थात भगवान भरोसे। ऐसे जोक सुनाते हैं। तो पढ़ाई की लगन, पढ़ाई को टाइम देना, एकांत में जाकर एक विचार सागर मंथन करना है। रोज 3-4 दिन से मुरलियों में आ रहा है, पढ़ाई को क्या करना है, एकांत में जाकर चिंतन करना है, मनन करना है, समझने की कोशिश करना है, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, ये क्या था। एक लाइन पढ़ना, रुक जाना, एक लाइन पढ़ना, रुक जाना, समझना उसे, उसकी गहराई में जाना। उस गहराई से ही योग समझ में आएगा, क्या है, कैसे लगा है। हमेशा पूछते रहते योग कैसे लगाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, वो कैसे करे, वो कैसे करे, क्यों पूछना है किसी से। सारे उत्तर मुरलियों में है, और जिससे हम पूछ रहे हैं उसके उत्तर में हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट अपने प्रश्न में है कि मैंने पूछा, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। उत्तर तो पता ही है सबके, अमृत वेला करो, बाप को याद करो, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करो, सारे उत्तर पता है, सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है जैसे उत्तर सुनते हैं। तो वो जो उमंग था प्रश्न का वो खो जाता है। जैसे मेरा प्रश्न बड़ा यूनिक है, और उत्तर कोई इंटरेस्ट नहीं है उत्तर में। एक ने उत्तर दे दिया, अब उसको छोड़ो, दूसरा कोई ढूंढो, हाँ इससे पूछा जाए, ये देखते हैं क्या बताता है। प्रश्नों के उत्तर चिंतन से मिलेंगे, प्रश्न के उत्तर अमृत वेला योग में मिलेंगे। शायद इसी हॉल में कभी मुरली चल रही थी तो एक विदेशी बहन ने बाबा से कहा था, बाबा मुझे बहुत अकेला अकेला लगता है, बाबा मुझे आई फील लोनली। तो बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, एग्जैक्ट शब्द तो नहीं पता, परंतु एक नई किताब आई है दादी गुलजार की, अंग्रेजी में है रियल गोल्ड नाम की, उसमें बहुत सुंदर सुंदर नई नई बातें लिखी हुई है। उसी किताब में ये प्रश्न है, यही उदाहरण है यह उस बहन का कि बाबा ने उसको कैसे समझाया। तो आत्माओं के उदाहरण, आत्माओं की जीवन कहानी, आत्माओं के बाबा के साथ के अनुभव पढ़ते रहना है ताकि हमारी बुद्धि फ्रेश रहे। तो विचित्र, हम हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स, पढ़ाई मिस ना करने वाले, रेगुलर पढ़ने वाले, टाइम टेबल से पढ़ने वाले, डिस्कशन करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान का डिस्कशन होना चाहिए डेली, आपस में जब मिलते हैं तो ज्ञान की बातें करनी है, बजाय इसके इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये सब व्यर्थ किचड़ा है, इससे उन्नति नहीं होगी। उन्नति होगी ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान की चर्चा से, ज्ञान की बातों का मनन से। जब भी पांडव भवन वहां से गुजरते हैं, किचन से मुरली लिखी होती है, जब जब गुजरो तब तक एक लाइन पढ़ लेना वहां से जो यहां सेवा में आए हैं। स्लोगन पढ़ना, सोच के जाना मैं वहां से गुजरूंगा तो केवल स्लोगन पढ़ूंगा, बाकी कुछ नहीं। स्लोगन पढ़ लेना और फिर जाते जाते सोचते रहना, रोटियां बेलते बेलते स्लोगन उसमें डाल देना, तो स्लोगन युक्त रोटी बन जाएगी अच्छी। उसके बाद में विचित्र पढ़ाई, विचित्र बाप, विचित्र बच्चे, टीचर विचित्र, स्टूडेंट विचित्र, और चौथा था प्राप्ति अविचित्र। विचित्र अर्थात चित्र नहीं, विचित्र अर्थात सूक्ष्म, विचित्र अर्थात निराकार। तो प्राप्ति कौन सी है, मुरली पढ़ने से या पढ़ाई से क्या मिलता है? जब ज्ञान की कोई नई बात एकदम से समझ में आ जाती है तो क्या होता है? अचानक से समझ में आ गई, 10 साल से पढ़ रहे, 10 साल से लिख भी रहे, पर एक दिन अचानक समझ में आ गई वो, और ऐसे समझ में आ गई कि जैसे बुद्धि के कपाट खुल गए। और हम सोच रहे ये बात कोई नई थी क्या, ये तो वही है, परंतु वो तो थी पर आज समझ में आई। तो जब ज्ञान नया समझ में आ जाता है क्या हो जाता है, तब खुशी। जैसे महात्मा बुद्ध को दिखाया, क्या उनको पहले पता नहीं होगा कि सभी दुखों का कारण इच्छा है? 10 साल तक तपस्या करते रहे, 10 साल तक अलग अलग गुरुओं के पास गए, 10 साल तक शरीर को ऐसा सुखा दिया, एक गुरु ने कहा अन्न का अनाज का एक ही दाना लेना है 24 घंटे में, वो भी किया उन्होंने, सब कुछ लगा दिया दाव पर, और शरीर ऐसा निर्बल हो गया कि उठने की क्षमता भी नहीं, गिर गए नीचे, जो जो जिसने कहा वो सब किया, और आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे नहीं होने वाला है, और सब कुछ छोड़कर उस वृक्ष के नीचे बैठ गए गया में, बोधि वृक्ष, और अचानक से संकल्प किया उस रात की, जब तक सत्य को नहीं जानूंगा उठूंगा ही नहीं, चाहे प्राण चले जाए। और उसी रात सत्य का उद्घाटन हुआ, सत्य का अवतरण हुआ, संबोधि, एनलाइटनमेंट। उसी दिन पता चल गया, उसी रात पता चल गया कि ये दुख का कारण है। वो जो पता चलना था, रियलाइजेशन था, वो किताब का ज्ञान नहीं था, वैसा रियलाइज हो जाए। तो ऐसे ही बाबा के सामने भी बैठ जाना, जब तक तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे मैं उठूंगी नहीं, पर बाबा के कमरे में मत बैठ जाना, नहीं तो उठाना पड़ेगा वहां से। ये मन की बात है कि जब तक तुम उत्तर नहीं दोगे मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो ऐसी ये 4 बातें थी, विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट, विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्तियां, अर्थात खुशी, सतयुग की प्राप्तियां। सतयुग का पद तो है ही, पर यहीं पर प्राप्तियां है, यही आनंद से पुलकित हो जाता है हृदय। तो ऐसी ये फर्स्ट पार्ट था मुरली का, मुरली का सेकंड पार्ट भी है, वो बाद में लेंगे। ऐसे कैसे कैसे एक का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाली आत्माओं को ऐसे अनेक जन्मों के लिए, एक जन्म में दूसरी आत्माओं का भाग्य बनाने वाली आत्माओं को ऐसे विचित्र बाप की विचित्र संतान, ऐसी विचित्र प्राप्तियां करने वाली आत्माओं को बोलते जाओ, ऐसे 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 रूहानी शक्ति स्वयं में भरने वाली आत्माओं को, ऐसे वर्षा अधिकार और प्राप्तियों को धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे समान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसी गड़बड़शाला में अब जाने वाली नहीं न जाने वाली आत्माओं को, इसी मुरली में भी है, गड़बड़शाला में चक्र बहुत लगाए हैं भूल भुलैया के खेल में, वहां न जाने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, खबरदार, अलर्ट, होशियार आत्माओं को, ऐसे समय के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे सदा अटेंशन में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे याद में जीने वाली आत्माओं को, ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे दूसरी आत्माओं को भी बाप के ज्ञान देकर वर्षे का अधिकारी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, ये परमात्मा तख्त तुम्हें प्राप्त है, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को, 2 सर्टिफिकेट लेने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल से मेरा बाबा कहाँ आया, मुरली में आया, सदा बाहर वाक्य है, दिल से मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को, और जिसने मेरा बाबा कहा और बाबा ने जिसको मेरा कहा वो जिम्मेवार है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये बड़े का काम है, बड़ों का काम नहीं, एक एक आत्मा के पीछे असंख्य आत्माएं, शांतिवन की मुरली। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।